नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत में रसोई गैस एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में कल शाम पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ये बढ़ोतरी सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है।
भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%।
सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। भारत ने आपूर्ति में मौजूदा बाधाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आपातकालीन तेल भंडार जारी करने के फैसले का स्वागत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय भागीदार है। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक 2026 पेश करेंगी। कल लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। सदन में वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशकों के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए खेदजनक है।
स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हुआ। विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा का सर्वेक्षण और सीमांकन करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गई है। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक वांगलिन लोवांगडोंग के लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि पाके केसांग जिले को पहले जिले के रूप में चुना गया है जहां सीमा स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा संगठन के आतंकी के रूप में हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये आतंकी मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के झांगर इलाके में अपने एक साथी के साथ सीमापार से घुसपैठ करने की कोशिश करते समय मारा गया था। सेना ने बताया कि दस्तावेजों और खुफिया जानकारी के आधार पर मृतक की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के निवासी हमजा यूसुफ के रूप में हुई है। भारत ने पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सहायता बढ़ा दी है। लेबनान और कतर से सैकड़ों भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लाया गया है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार 177 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था कल उनके नियोक्ता द्वारा आयोजित चार्टर उड़ान से नई दिल्ली वापस लाया गया। बेरूत रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने इस समूह को विदाई दी। इस बीच कतर स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कतर में फंसे 500 से अधिक भारतीय कल कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत पहुंचे। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात ने विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की है। अबुधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबुधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। आज विश्व किडनी दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किडनी को स्वस्थ रखने और उससे संबंधित बीमारियों की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में कल तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।